वेद है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी आशीषों को हम तक निरंतर पहुंचा रहे हैं, फोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और SMS के माध्यम से। मुझे आशा है कि आप सब भी इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कृपया आप भी पत्र के द्वारा से अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। और यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं तो आप उसे भी दे सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपके पत्रों को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम एकजुट होकर आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के निकट आपके वचन को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें ताकि आज हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं प्रत्येक के जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए आत्मिक उन्नति और लाभ का कारण ठहरे। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप अपने लोगों की रक्षा करें, उनकी सहायता करें ताकि वे पवित्रता का, ईमानदारी का जीवन जी सकें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय पाप में पड़े हुए हैं, बीमार अवस्था में हैं, तनाव में हैं, दबाव में हैं, प्रभु जी आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें और उनके पापों से उन्हें छुटकारा दें, चंगाई दें, शांति दें, ताकि प्रभु वे आप पर विश्वास करने पाएं। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जकर्या नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए जकर्या की पुस्तक उसके 7वें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 7 और 8 को मैं ऐतिहासिक मध्यांतर कहता हूं। यह लगभग वैसा ही है जैसा हमने हग्गई की भविष्यवाणी में देखा था। भविष्यवाणियों के मध्य परमेश्वर ने हग्गई को याजकों के पास भेजा कि वह उनसे 1-2 गुना प्रश्न पूछे जो व्यवस्था से संबंधित था। क्या कोई अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु के स्पर्श से स्वच्छ हो सकती है या हो जाएगी? या दूसरा, क्या कोई अशुद्ध वस्तु के स्पर्श से शुद्ध वस्तु अशुद्ध हो जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर थे, अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करने पर शुद्ध वस्तु अशुद्ध हो जाएगी, परंतु अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु के स्पर्श से शुद्ध नहीं होगी। जकर्या के ऐतिहासिक मध्यांतर में भी ऐसी ही समस्या है, परंतु उसका परिप्रेक्ष्य कुछ भिन्न है। आइए हम देखेंगे धार्मिक संस्कार से संबंधित एक प्रश्न और वह है उपवास रखना। उपवास रखना, जकर्या के पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नामक नवे महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, यहां जकर्याह उनके लिए फिर एक महत्वपूर्ण संदेश ला रहा है। वह स्पष्ट करता है कि यह उसकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। यहोवा का वचन कहता है, दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नामक नवे महीने के चौथे दिन को। हमारे कैलेंडर के अनुसार यह समय है दिसंबर 4, 518 ईस्वी पूर्व। यह वही समय है जब हग्गै की भविष्यवाणी हुई थी, अर्थात जब हग्गै भी इसराइलियों को व्यवहारिक रीति से संदेश सुना रहा था। आगे हम पढ़ते हैं जकर्याह 7 उसके 2 पद में लिखा है, बेतेल वासियों ने शरेसेर और रेगेमेलेख को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें। मेरे मित्रों, डेविड बेरिन की व्याख्या इस पद को समझने में हमारी सहायता करेगी। यहां यहोवा का भवन इसराइल का मंदिर नहीं है, यह एप्रेम के लिए काम में आने वाला अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय उसके 17 पद में याकूब ने उस स्थान को बेथेल अर्थात यहोवा का भवन कहा था। यही उत्तरी राज्य इसराइल के राजा यरोबाम ने सोने के बछड़े की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। ये लोग यहूदा वंशी नहीं थे, वे संभवतः एप्रेम वंशी थे। इसका अर्थ है कि 10 खोए हुए गोत्र खोए हुए नहीं थे। एजरा की पुस्तक को सावधानी पूर्वक आप पढ़ेंगे और पढ़ने से ज्ञात होगा कि स्वदेश लौटने वाली इसराइलियों में से कुछ गलील सागर के उत्तर में बसे थे। यह क्षेत्र 10 गोत्रों का स्थान था, अतः स्वदेश लौटने वालों में 12 गोत्र के इसराइली थे, यद्यपि वे संख्या में बहुत कम थे, मात्र 60,000। अतः 10 गोत्रों का खो जाना संभव नहीं है। मेरे प्रियो, जकर्याह की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा हुआ है, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्रश्न है। ये लोग यरूशलेम के मंदिर में याजकों से पूछने के लिए आए थे कि उपवास रखना सही है या गलत, क्योंकि वे बेबीलोन की बंधुआई में जाने से पूर्व और बेबीलोन की बंधुआई के समय भी उपवास करते थे। भजन संहिता 137 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े, उसके बीच के भजन वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। उनका विलाप करना भी एक धार्मिक कृत्य हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें उपवास नहीं 7 पर्व दिए थे। जी हां, उपवास करना, विलाप करना और दुख मनाना उन्होंने बंधुआई के समय आरंभ किया था। वे बंधुआई से लौटने के बाद भी उपवास रखते थे, परंतु परमेश्वर उन्हें आशीषें नहीं दे रहा था। कुछ समृद्धि तो अवश्य आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए थे और सुख से रह रहे थे, परंतु उनकी शिकायत थी कि धार्मिक कार्यों को करने के बाद भी परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं दे रहा था। यह शिकायत आज भी हमारे लोगों के जीवन में पाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं तो तुरंत उसका परिणाम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि हमने भला किया है, आपने हमें आशीष नहीं दी है। मेरे प्रियो, आज भी सांसारिक धर्म औपचारिकता दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब मनुष्य सोचना बंद कर दे, जब वह प्रभु यीशु से अलग हो जाता है, तब वह धार्मिक अनुष्ठान निभाने लगता है। यह आत्मिकता का पतन है। हम जो आराधना विधियों के दास नहीं होना चाहते, स्वयं विधियों का पालन करते हैं, जैसे स्तुति गान, समय समय पर खड़ा होना, बैठना, घुटने टेकना, आशीर्वाद वचन को कहना आदि। परमेश्वर ने इसराइल को जो धर्म दिया था उसमें विधि विधान था। वे लोग आकर याजकों से पूछते हैं, हम लोग इतने समय से उपवास रखकर विलाप करते आ रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है। यह एक उबाऊ काम है, हमें तो इसमें समझ की बात दिखाई नहीं देती है। क्या हमें ऐसा करते रहना है? यह प्रश्न उनके लोगों की है। तो आगे हम देखते हैं उसका उत्तर, तीन गुना उत्तर। जकर्या उन तक परमेश्वर का उत्तर पहुंचाता है। परमेश्वर न तो उपवास को गलत कहता है और न ही सही कहता है। धार्मिक संस्कारों के प्रश्न का उत्तर तीन गुना है। एक, मन सही है तो धार्मिक कृत्य भी सही है। इसे हम पद 4-7 में देखते हैं। दूसरा, मन सही नहीं है तो धार्मिक कृत्य भी सही नहीं है। इसे हम पद 8-14 में देखते हैं। और तीसरा, अध्याय 8 में परमेश्वर कहता है कि धार्मिक कृत्य यरूशलेम के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को बदल नहीं सकते। जी हां, यह उत्तर आज के विचार के लिए अति उत्तम है। जब लोग कहते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है कि प्रभु यीशु शीघ्र आ जाए, मेरे मित्रों, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगत उसकी इच्छा से चलता है, आपकी इच्छा से नहीं। आपके काम उसकी योजना में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वे सोचते थे कि वे परमेश्वर की योजना में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः अध्याय 8 में परमेश्वर कहता है कि वे उसके उद्देश्य को विचलित नहीं कर सकते हैं। मन सही है तो धार्मिक कृत्य भी सही होगा। जकर्या के पुस्तक 7 अध्याय उसके 4-5 पद में हम पढ़ते हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? ध्यान दीजिए, लिखा है जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे। मेरे प्रियो, बंधुआई के समय अगस्त और अक्टूबर के महीनों में वे उपवास रखकर विलाप करते थे। कहता है, क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? क्या यह मेरे सम्मान और मेरी स्तुति के निमित्त या तुम्हारे स्वार्थ के लिए था कि मैं तुम्हें आशीष दूं? आज हम में से कई लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, न कि परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए हमें समझना है कि हम उपवास और प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर न तो किसी अनुष्ठान को तुच्छ कहता है और न ही उसका अनुमोदन करता है। उन्हें ऐसा लगता था कि यह सब करना उबाऊ है, परंतु परमेश्वर कहता है कि उनके कामों से परमेश्वर ऊब गया है। जी हां, परमेश्वर आज की आराधनाओं के लिए भी यही कहता है कि देखो कैसे कैसे और क्या क्या वे करते हैं कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह ऊब गया है। जकर्या 7:6 में हम पढ़ते हैं, जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? परमेश्वर कहता है, तुमने मेरे लिए तो उपवास नहीं किया है। उपवास के बाद जब तुम खाते और पीते हो, अर्थात जब तुम खाने पर टूट पड़ते हो, तब क्या तुम मेरे लिए भोजन खा रहे हो? पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस लिखता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और इससे पूर्व अध्याय 8 पद 8 में उसने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो हमें कुछ लाभ नहीं। यदि आपके उपवास से परमेश्वर का महिमान्वयन हो रहा है तो अवश्य उपवास रखें, अन्यथा उपवास रखना व्यर्थ है। इसी प्रकार हमारा मसीही विश्वास और जीवन रविवार का काम नहीं है, रविवार की आराधना की पहचान है। आपका साप्ताहिक जीवन कि आप किस प्रकार जीवन जीते हैं। इस अध्याय के अंत में परमेश्वर उनके व्यापार, सामाजिक जीवन और उनके मनोरंजन से संबंधित जीवन की चर्चा करेगा। उनका आचरण प्रकट कर रहा था कि वे ईश्वर भक्ति का जीवन नहीं जी रहे थे। धार्मिक कृत्यों का औचित्य प्रदर्शन के लिए इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे कहता है कि बंधुआई से पूर्व भी वे धार्मिक कृत्यों की पूर्ति कर रहे थे, परंतु अंततः बंधुआई में वे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना था। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लाए गए परमेश्वर के संदेश का उपयोग नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया, और यही कारण है कि उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर आपके धार्मिक कार्यों को नहीं, परंतु आपके व्यवहारिक जीवन को देखता है। वह आपके आचरण को देखता है। वह आपके जीवन की पवित्रता और शुद्धता को देखता है। यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यह कि क्या आप उसके बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं, क्या आप उसके संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। यदि नहीं तो निश्चय जानिए कि आप भी परमेश्वर से दूर हैं और पाप की गुलामी में जीवन जी रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, तो आप उसकी ओर फिरें। सिर्फ प्रतिदिन के उपवास और प्रार्थना पर आप निर्भर न रहें। हो सकता है यह आपके जीवन के लिए एक रूटीन बन गया हो, परंतु परमेश्वर आपके इस कार्य को नहीं, आपके हृदय को, आपके विचारों को देखता है। क्या आप अपने विचारों में, हृदय में खरे हैं? यदि नहीं तो आपको उसके पास क्षमा मांगने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप परमेश्वर की सत्यता को ग्रहण कर सके।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210021। 9818। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की। हम सब आते हैं
प्रभु की। हाले
आते हैं।